रामचंद्र जी के जन्म के उपलक्ष्य में अभिवाद तिथि हम लोग मना रहे हैं और इसे जन्म 11 तारीख को होगा, इसमें धूमधाम से उनका जन्म महोत्सव मनाया जाएगा। ये राम कृष्ण है और कोई नहीं, और कुछ नहीं। सामने आप लोगों को रामचंद्र जी के जनकपुर में पधारने और सीता जी के स्वयंवर के संबंध में हम लोगों ने बताया और किस प्रकार से तथा से अयोध्या से बारात आई, रामचंद्र जी का सीता के साथ में, लक्ष्मण जी का उर्मिला के साथ में, शत्रुघ्न जी का छोटी छोटी और भरत का मान लो धर्म कान मंडली से ये शादियां हुई। इसके बाद में बड़े भोग धाम से महाराज विदा होने आई। महाराज जनक वे ब्रह्म तत्व के ज्ञाता हैं, संसार से परमा के रक्षक हैं। इतना होने पर भी जब पिताजी की विदाई होने लगी और पिताजी आई और उनके गोदी में निपट गई और रोने लगी विदाई के समय, महाराज जनक का भी ज्ञान खड़ा रह गया, उनके आंख खड़ा आए और वो भी रोने लगे। तो और कुछ बात, घर की मैना पक्षी सूख पक्षी भी पिता के लिए विलाप कर रहे थे। सारे जनकपुर के लोग पिता के लिए विलाप कर रहे, अद्भुत विरक्त बता रहे थे। सुख फिर धैर्य धारण कर बच्चे की और सदानंद जी के कहने से बारात पैदा हुई। अभी विराट बारात विदाई हो रही थी और उसने बरात विदा होने ही जा रही थी, इतने में बड़े जोश से आदि आए, बड़े जोश किसी की धूल आकाश मंडल में व्याप्त हो गई और राजा जितने थे सब जो आए थे मनुष्य यज्ञ में वो मोह प्राप्त हो गए, आंखें बंद हो गई, ऐसे थर्रा उठे। केवल प्रतिष्ठ जी महाराज जनक और इधर रामचंद्र जी और भक्त दशरथ महाराज के ये सब का कुछ नहीं हुआ। बाकी लोग डर के मारे कांपने लगे और देखा कि हाथ में थपके दिए हुए बड़े क्रोधित होकर पृथ्वी के क्षत्रियों को एक एक बार बंद करने वाले परशुराम जी विकास जगाए, क्रोध में आग हुए वहां पर उपस्थित हो रहे। आते ही सब राजा लोग डर गए, महाराज जनक भी डर गए, इनका विकराल वेश देखकर बोले और महाराज जनक तुमने ये क्या किया, अतिम काल से दो धनुष आ रहे हैं जिसमें शंकर जी ने त्रिपुर का वध किया और उसे अवस्थित एक वैष्णव धनुष बना और उस समय में त्रिपुरासुर का ध्वंस करने के बाद में वो सुरक्षित था और उसी को लेकर शंकर जी और इधर विष्णु दोनों ने देवताओं ने कुछ मिल करके और दोनों में युद्ध करा दिया। विष्णु से और शंकर का तमाशा देखने के लिए कौन बलवान है, किसका प्रभाव अधिक है। और शंकर जी को धनुष लेकर इसको त्रिपुरा सुल्तान महाराज साहब जी धनुष और जिससे वो विष्णु लड़े थे और शंकर थे और दोनों में युद्ध होने पर शंकर को भगवान ने युद्ध में पराजित किया और उनके धनुष के चमकार इत्यादि को खास करके वैष्णव बाण से और धनुष से उनको जीवित कर दिया। और फिर जब वो हार गए शंकर तो वो भगवान विष्णु की आराधना करने लगे सौ स्तुति का। देवताओं ने कहा कि हमारा सौभाग्य की ये दृश्य हमको मिला, तो विष्णु की श्रेष्ठता करने के लिए ये हुआ। वो धनुष त्रिपुरारी वाला वहां पर रखा था और राम का जो वैष्णव भगवान का जो विष्णु का जो धनुष था वैष्णव वो अभी मेरे पास में है। मैंने देखा तपस्या के बल से जो अभिमानी दाम्भी राम दशरथ का पुत्र जो कौस्तुभ का शिष्य बनता है विश्वामित्र का, आज उस शंकर के पुराने धनुष को तोड़ दिया। मैं अपने साथ में यह धनुष लाया हूं, यदि ये वीर पराक्रमी है तो इसका धनुष की प्रशंसा चढ़ा दे और इसके बाद मैं देखूंगा कि हाँ हमसे लड़ने योग्य है तब गर्व युद्ध इसे करें। ललकारने लग गए। राम ने कहा जब की बात लड़ाई करें। बीच में लक्ष्मण जी बोलती है अरे ऐसे ऐसे धोने दिया तो हमने
बचपन में किला तोड़ा
तोड़ दी, आपको कभी दोष नहीं हुआ। और इस एक सड़े गले पुराने धनुष के लिए धनुषिया के लिए आप लीजिए तो बड़ा विषधर है वो, इसका बड़ा भैया बड़ा ऊपर से बहुत दिखलाता है सब। और ये छोटा सा बच्चा जो महादाम्भिक है, मैं हमारा पता उठ रहा है, देखो तुमको कोई विश्व में रक्षा नहीं कर। लक्ष्मण जी ने कहा यहाँ पर कोई कोमड़ी का बतिया नहीं है, कोमड़ी का बतिया माने होता है ऐसे हाथ दिखलाने जैसे
सड़ जाता है, सड़ जाता है,
सड़ जाता है
कोमड़ी का बतिया।
तो कोमड़ी का कोमड़ी का बतिया यहाँ नहीं है, ये इतना खाते लोग फिर बिगड़ गए। जब बिगड़े तो राम को कहते हैं ये तुम ऊपर से बड़ी बड़ी मधुर मधुर बात करता है और इधर में ये बड़ा विषधर नार जैसा बीज उगलता है, आज ये विश्वामित्र के साथ में नहीं आया होता तो कभी इसको मार करके खत्म कर दिया होता। लक्ष्मण बोले से उसको रखते क्यों है, मार करके तो देख लो, यदि शक्ति है तो ये देख लो। इस तरह से उनको तरह तरह से ये रिझाने लग गए और उनका क्रोध उमड़ता हुआ चला गया। अक्रोध में उनकी विष्णु की जो शक्ति है राम की
आवेश अवतार था
वो खत्म हो गया। जितने क्रोध करते गए और ऐसे अंत में हता नहीं चलाना जहाँ कि उनके हाथ से चला नहीं, ताकि मैं जान करके छोड़ रहा हूँ अब नहीं करूंगा। यदि एक बात किया तो राम ने कहा जैसे भी हो कि आपका दास है, आपका नाम मेरा तो केवल राम नाम है और आपका परशु राम है, इतना बड़ा नाम आप उससे बड़े हैं हम पर कोई क्यों ये दुर्मुखा बच्चे को क्षमा कर आप तो सब एक ही बात इतनी ज्यादा नहीं किया
चले ना वो चलिए।
तो देखिए आप जो क्षत्रिय वेश में आए एक तो साधु वेश आता किंतु हाथ में पट्टा और यहाँ पर तीन धनुष क्षत्रियों का वेश और उधर में जटा युद्ध सारी साधुओं का वेश देख करके इसको उठान हो गया बच्चे को। हमारे शास्त्रपुर में ऐसा कोई चीज नहीं हुआ जो किसी की चुनौती को स्वीकार न करे। घर में हम शिक्षा देने वाले नहीं है, आप जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं हमारा क्षत्रिय कुल में ऐसा कोई पैदा नहीं, हमारा कुछ कुल है कुछ बंद इसलिए आपने ललकारा इसलिए बच्चा बोल रहा था नहीं चाहिए नहीं बोलता किसी तरह से उनको चिढ़ाते और करते अंत में राम ने वो बैठवी शक्ति ले ली तब इनको जब शक्ति दे दी तो जब नीम शक्ति खो गए इसकी कौन है कितना तो विश्व में इतना दिन रहा कोई कितना किसी निर्भय युक्त हमसे बात नहीं की अंत में नेताजी ये विष्णु का ये धनुष लो और इसको चढ़ा दो तो मैं समझू वहां तुम यथात में भगवत राम है संतन संतन क्या तो चढ़ाओ राम और महापति करथम दे ये राम और महापति लक्ष्मी नारायण विष्णु का ये धनुष है और इसके ऊपर में सत्य क्या चढ़ा करके बात थोड़ा कम समझ गया राम ने उनके हाथ से धनुष आदि चाहिए अपने आप चढ़ गए चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ी और उन्होंने बाण उठाया और खेच करके कहा मैं ये बहुत बाण अपने हाथों में लिया है ये निर्भर नहीं जाएगा या तो आपको मारेगा अथवा आपके जो तपस्या का फल है जो आपने अर्जन किया है लोगों में जाने आने का ये सब ये तपस्या का फल आपको समाप्त हो सकता है तो उन्होंने कहा मेरा संदेह चला गया मैं समझ लिया कि आप भगवत राम हैं मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मुझे हमारे मत किंतु हमारे तपस्या के रूप से जो ब्रह्मलोक तक जाने की जो शक्ति थी वो तो समाप्त हो गया किंतु मैं चौथा सीताराम हूं आप ऐसी सामर्थ्य दें कि मैं मंदराचल में जाकर के अब कुछ तपस्या करूं भगवान ने उठाया बाण और उसको चलाया उनको तो नाम नहीं मारा क्योंकि तपस्या का जो कुछ था ब्रह्मलोक के लिए आने आने के लिए और जो सुख भोका वो सबको काट करके खत्म करता और इसके बाद में राम की परिक्रमा करके अपने मलयाली के पर्वत पर
मंदराचल में
वो चले गए पहले उन्होंने परशुराम जी ने एक ही बार पृथ्वी का ध्वंस करके सारा राज्य कश्यप जी को दान कर दिया था और प्रतिज्ञा की थी हमें धनुष बाण रख देता हूं अब शस्त्र नहीं उठाऊंगा अब मैं अपनी तपस्या करूंगा तो राम लक्ष्मण जी ने कहा तो आप जबकि कश्यप को दान कर दिया तो यहां पर क्यों आए अभी क्रोध नहीं गया लेकिन उनको दूरा करते इस तरह से उनका क्रोध शांत हो गया वो चले गए और समझिए कि ये राम का धान नहीं पर ब्रह्म है इसके बाद में बरात लौटी कई कई ने सबसे आगे बढ़ करके बड़ बधु का
स्वागत
किया और उनकी आरती उतारी घर में ले गई
भगवान दान कर रहे
राम को आगे और पिता पिताजी ने उनके पैर किए और सब भाग्य की भव फिर अपने बेटे को और फिर
लक्ष्मण को
अपनी बढ़ियाएं ली और इन्होंने पिताजी को अपना कनक महल महाराज दशरथ ने दिया था कनक महल वो कह कई ने कह कई ने उनको पिताजी के लिए राम के लिए वो कनक बड़ी खुशी करती थी तत्पश्चात कुछ दिनों के बाद में महाराज के आदेश से भरत जी अपने ननिहाल गए और उनके साथ में सब सुख भी गए अभिधर महाराज दशरथ की चार कर हमें बुढ़ा दे मैं चाहता हूं कि युवराज का पद राजकाज का यह सभी संभाले में ऊपर से रहूंगी किंतु अब युवराज का पद इन्हीं राम को दे दिया बड़ा लड़का है प्रसिद्ध, जिसके शिक्षा ऋषियों को बुलाए मंत्री उनसे और सब ज्ञान अनुमोदन किया। बहुत अच्छा उन्होंने कहा कि शुभ बहुत कप है तो इस वर्ष में और कोई शुभ मात्र नहीं है इसके, बस केवल कल ही है। इसी बीच में कल सारी व्यवस्था करके उनको दे दिया। महाराज दशरथ ने कहा कि हमारे बेटे अक्सर शुक्ल तो अभी नहीं हाल में है और कोई तैयारी नहीं है, कल कैसे संभव होगा। उन्होंने प्रसिद्ध कहने का सारी व्यवस्था हो जाएगी, सारी व्यवस्था हम करा देंगे। अयता से सुमंत्र को जो अपने से मंत्री से उनके परिस्थितिय से एक बात पानी से उनको कहा और उन्होंने अपने दूतों के द्वारा जितनी सामग्री है राज्याभिषेक सारी मंगवा दी। भगवान से सप्रजाय भी आई, सबने मिलकर के लिए किया कल रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होगा। विधोरा पिट गया, बरानी कौशल्या के खुशी पे आंसू बहने लगे। पिताजी बड़ी प्रसन्न हुए, सब भाई लोग प्रसन्न हुए, कहे कही तो इतनी प्रसन्न है कि पिता को ठीक नहीं हद नहीं, बड़ी प्रसन्न हुई। जो उसको समाचार सुनाया कुकिया ने उसकी
मंथरा
ने उसको सोने का अपना बहुत सुंदर हाथ के गले में वो खूब थी। उसने वो हाथ को निकाल करके अब फेंक दिया, अरे मूर्ख तुमको कुछ ज्ञान नहीं है, आज तू राजरानी है और कब तुम दासी बनेगी
नौकरानी,
कौशल्या बनेगी राजरानी
राजमाता
और राजमाता का कहा जाएगी और तुम
नौकरानी
कहेगी शायद तुमको ज्ञान नहीं है। अरे अजीत गंदी बातें मत कर, मैं ये सब नहीं सुनना चाहता, तुम बाहर दो बड़ी प्रसन्न हो जाओ, मैं भी राजमाता ही रहूंगी, राम उसको बहुत स्नेह करता है, अपनी मैया को सिद्धा से भी अभी कहीं निकाल के देखो, मैं फिर से समझ में नहीं आया। हियरिंग राम कथा रामायण ऑफ द लोटस माउथ ऑफ गुरुदेव देयर इज से कृष्णा हिमसेल्फ ही बिकेम राम, हु इज राम नन अदर देन कृष्णा, एंड दिस इज द पीरियड ऑफ हिज मैरिज व्हेन लॉर्ड राम ही गॉट मैरिड in Janakpuri and Sita was going back to her in-law's house. In India this is always a very specific thing even today. When the daughter she departs her parents' house and goes to her in-law's house, she changes her residence forever. That thing is always very, very fascinating. Raja Janak, he was a renowned person, Jnani, Sita is fully, but when Sita, she went to her father and she fell in his lap and she started crying, then Janak also could not resist. He could not also stop himself and he started crying and weeping. That was the thing. When Sita ji was departing, not only Sita ji was weeping or her mother was weeping or Raja Janak was weeping, even the small birds like Mena in that house was weeping too. whole Janakpur was living, every person, every living entity was living when Sitaji was departing from Janakpur to Ayodhya. Everything took place. They just started going. The moment they were going, this device activity was taking place. There was a very big storm-like situation. A sort of bhavandar, what you call it, cyclone. So much dust, it went around the whole atmosphere. That one cannot see what has happened. Everyone was scared. It was so much heavy storm. What was happening? Parshurama was coming. Parshurama is known as Shaktavit avatar of Lord Ram, incarnation of Ram. And when he came, Gurudev is explaining that this dhanush, what you call dhanush? Oh. This dhanush bow, because broken by Lord Ram, that belonged to Lord Shiva. Lord Shiva killed one demon. His name was Tripurar Asur, Tripurar Asur. And this is for him, Tripurar Asur. And one demigod, they played a very clever situation. They wanted to see a fight between Lord Shiva and Lord Ram. Vishnu. And a fight took place. In that fight, finally Lord Shiva was defeated. This was the show to the whole universe that Shiva is Lord Ram, Vishnu is Lord himself, and Shiva is his worshipper. And Lord Shiva started worshipping Vishnu, and then Vishnu became pleased. So Vishnu was having one bow that is called Vaishnava bow with him. And Lord Shiva was having one bow, that was this bow which was lying in the house of Sinjana. And that was broken by, this bow was broken by Lord Ram. When Parshuram came, he said, "You have broken this bow. If you are really a powerful person or Vishnu yourself, then here is a Vaishnava bow. You take it, put a string on it, and then you use it. I will see if you can do it, then I will accept your strength." Meanwhile, Lakshman, younger brother of Ram, looking very a child boy, he said, "In our life we have broken so many bowls, and this was very old and rusted one. If we have broken, why are you crying so much?" And Parshuram said, "Do you know Ram really not broken that one? When he sat in the automatic room, he broke it. Lakshman said, "My brother did not break it. It was so much old, stale and rusted that my brother just touched it and it got broken. And you are crying for it, such a old bow."
I will give you a new
bow. And at that time he became, "Do you know whose bow was this?" And he became very much angry. When he was very much angry, "I will kill you." And he took his parda. That was Pasha, what do you call it?
Maybe it is not exactly X.
X is called to Hari inside in Hindi. It is something different. Anyway, he said, the Gurudev has a saying for one thing which is really an insight to us. Lakshman was speaking in this manner that the anger of Parshuram was increasing and increasing and increasing. And because of this anger, he was losing his Vaishnava, Shaktavet avatar of Lord Ram. That incarnation of Lord, which was in him, he was losing it. And his strength was going down. And he found himself that he was unable to pick up his axe. And when he found that he was unable to pick up his axe, Lakshman knew it. Kekai was so much dear to Dasharatha, King Dasharatha. And King Dasharatha gave him a very, very beautiful golden palace. Name of that palace was Kanak Mahal. And Kekai, in the joy and in happiness, gave the keys of that Kanak Mahal to Sita, that my Kanak Mahal now belongs to you. This was her gift to Sita Ram. She showed that how much love she had for Lord Ram. And it happened after some time that Bharat and Shatrughan went to their maternal house. They were away from Ayodhya, and this Lord Dasharatha Maharaj, he thought that I should give my kingdom to Lord Ram. I have become now old. So what should I do and when should I do? So he got his Guru Vasishthji. And Vasishthji told that we have only one day, that is tomorrow. In whole year there is no any auspicious day. And Maharaja Bhattar had great work.
What's
that name called? Ram Navami. Same Ram Navami. There is only one day. That is the first day of Lord Ram. Ram Navami. And at that time, Maharaja Dasharatha said, how is it possible that we will arrange everything? My son, Dasharatha and Bharat is also not here. Which is, he said, everything I will arrange. Because there is only one day that we have to do this thing. So, this news is spreaded. And Vasishthji was also making so many arrangements. The whole country was happy. Every citizen was happy. All mothers were happy. The most happiest lady was Kekai. She was so happy. When this news was told to her by her servant, her name was Mantra, she started dancing and gave her very valuable necklace to that servant, Mantra. And that Mantra, he started instigating, Kekai, you are giving me this gift and showing your happiness, I feel you are the fullest lady of this world. Why are you happy? You know, you are going to adopt a servant position now. You are Kaushalya. Kaushalya will become Rajrani. She will become Raj Mata, and you will be her servant, and you are becoming happy. So this was happening, and what happened now will never tell them. Kaikai ji ko yaad aayi, apne pitaji ki baat. Ya hamare pitaji ne inse pratijna kara ki humse garv se jo bachcha paida ho ye rajya ka adhikari, you are Rajya. Aur इनको याद आई राम की बात. राम ने उनको गोदी में बैठ करके कहा था कि हमारी दो नीति की बात दो बात भरत को राज्य हो और हमारा 14 वर्ष वनवास ये जरूर करो, नहीं तो हमारा देवताओं का ये जो अभिलाषा थी वो पूर्ण नहीं हो, पृथ्वी का भार नहीं करूंगा. और तीसरी बात उनको याद आई महाराज दशरथ के दो वर देने का, जिसको छाती के रूप में उसने रखा. अब उसको याद आई कि हमको किसी भी हालत में बीज पीना होगा, सारा संसार हम उससे घृणा तो करेगा, तो फिर भी हमें यही करना होगा जो राम ने हमसे कहा, इसलिए प्रतिज्ञा करेंगे. इसका उन्होंने वो को फॉर्म में चली गई, अच्छे राजरानी की पोशाक को फेंक दिया, गंदे पड़े पुराने कपड़े अलंकार रही धो करके, और उन्हें लगी महाराज दशरथ को पता लगा, को भवन में गए उसको मनाने के लिए. उसने कहा कि आपने दो बातें हमको बर देने के लिए कहा था और मेरे पिताजी की बात याद है, तो उन्होंने याद कराया कि महाराज दशरथ जी ने आपने हमको दो बातें दी थी, प्रतिज्ञा की थी देने की, और आज मैं समय पर वो दोनों बर मांगी, और हमारे पिताजी की बात याद है आपको कि हमारे घर से ही बच्चा जो राज या राजगति पर बैठेगा. आप उनको याद आई, मैं कहे मानो क्या चाहती हो, मैं सभी कुछ दे दूंगा. मानती हूँ कि भक्त को पहले राजा बनाएंगे राम के बदले, उसका राज्याभिषेक हो और रामचंद्र 14 वर्ष के लिए बन जाए. महाराज दर्शक सुनते ही एकदम उचित हो संतना होती, कुछ ये होने पर वो मनाने तरीके से यही आप पाते थे सब प्रकुल रीत सदा चली आई प्राण जाय बलि पचन। यही आप कह रहे थे और शिव कहते एक छोटी सी बात नहीं मान रहे थे और प्रतिज्ञा करके कहा आप जैसा शिव का तो जगत में नहीं है, यदि है तो हमारे बात को आप सत्य करके दिखा। इसके बाद में रोने लगी, बहुत समझाने की चेष्टा कि अच्छा पंत राजा हो जाएगा इस मान को कोई संदेह हम हम कर दे, किंतु ये हम से मत कराओ कि राम को हम बता तो हमारा बेटे का राज्य स्थिर कैसे होगा, ऐसा नहीं जरूर देना तो मैं जीवन ना दे। रोने लगे मुश्किल हो गए, कहते राम को बुलाया, राम आए पिताजी के चरणों में प्रणाम किया, किससे बुलाया पिताजी, पिताजी कुछ बोल रहे हैं नहीं रहे हैं रो रहे हैं। कहते ही कहा कि मेरी छोटी बात करिए रो, मैंने कहा कि भक्त राजा हो और राम का वनवास दुर्गावन किया, बस इस छोटी सी बात के लिए रो रहे हैं। काफी कहते हैं सत्य का विचार नहीं हो है, राम ने कहा प्रणाम करके बन जाते, अरे इतनी छोटी सी बात के लिए इतना कठोर तो बातें कर रही हो, मुझे कहा देती क्यों क्या मैं तो ऐसे ही चला जाता तो मैं अब तैयार होकर के आ रहा हूँ, अभी वनवास के लिए तुम चिंता मत करो, तुम्हारा आदेश है और यही यदि राजा की इच्छा मैंने कर पाते हैं तो मैं अभी तुरंत वनवास के लिए कल के लिए नहीं अभी प्रजाति तुम करोगे नहीं तो ये मेरी बात नहीं मानी। राम गए और कौशल्या के चरणों में प्रणाम किया, कौशल्या ने सोचा कि अब राजा से कल होने वाला ही इसलिए आया है, बड़े आशीर्वाद किया तो जैसे देखो ये समय धैर्य का है, मैं अभी पंच के लिए जा रहा हूँ, पिताजी के और माता जी के आदेश ये कैसे हो गया, माता को बहुत समझाया फिर पिताजी के पास में गए, पिताजी विलाप करने लगे, बोली हम भी चले, इसी तरह से उनको आज जंगल में सांप बिच्छू और मस्त गर्भ इत्यादि हैं, तुम सुकुमार तुम्हारे पैर नहीं जा सकेंगे और तुम दैत्य दानव चारों तरफ में घूमते हैं, पहाड़ों पर नहीं चढ़ सकती, उसमें सांप ऐसे भरा हुआ है इतना सुगम नहीं है, इसे तो मत जाओ कौशल्या की सेवा करो या तुम जनक श्री में सुन जाओ जब तक ही नहीं हो वही है वही स्वर्ग है वही सब कुछ है, मैं आपके साथ मिल जाऊँ बहुत समझाया। फिर कौशल्या जी ने सीता को समझाया वो नहीं है, अंत में कौशल्या ने कहा देखिए इसको आप देख दो तुम्हारे साथ ये ठीक ही कर रही है, पति इसी के लिए पति प्रकार धर्म सकते इसे ये बुरी बात नहीं कर, इसके लिए वही अयोध्या वही इसके लिए सब कुछ है यदि तो ये साथ। लक्ष्मण जी दंत लेकर के अड़ गए, बोले आज मैं दशरथ को कामी पुरुष को इसी पति को जैसी जो राजा का आत्मा दे रहा हूँ कहते ही और उसके पुत्र को भी भरत को भी आज खुशी से अलग कर दूंगा, अजय के कौन आर्थ है उसको बचाने वाला, धर्म लेकर के उछल पड़े राम अजय सर से धारण करो विचार करो हमको धन्य यदि करना चाहते हो हमारी बात मानो शांत करो महाराज जाकर के लिए ऐसा मत, उनकी विवर्षा को देखो ये किस लिए ऐसे हो किस स्थिति में उन्होंने दिया, प्रभु की ऐसी बात है जो प्रतिज्ञा करते हैं उसको सत्य को पूर्ण करते हैं, उनकी विवशता कर दो तो किस विवश अवस्था में वो हैं और उनके प्राण पखेर हो रहे हैं जा रहे हैं मरने के लिए और तुम उनको ललकार रहा है ऐसा मत करो, नहीं तो हम तुमसे भाई का संबंध छोड़ देंगे सुनते ही उनके चरणों में दिए। ये तीनों गए राजसभा में महाराज दशरथ के पास में, यहाँ पर कह गई खुदकार रही है और महाराज दशरथ बेहोश में पड़े हुए हैं, फिर दशरथ को उन्होंने प्रणाम किया राम लक्ष्मण और सीता जी ने, उस समय में महाराज ने देखा और रोने लगे, राम ने सांत्वना दिया अब इस छोटी सी बात के लिए रो रहे हैं, मुझे तो बड़ी खुशी है कि हमारा छोटा भैया राज पर बैठा, ये जो के लड़का है जो के हमारा भाई है हमारा विश्वास पात्र है इसलिए आप इसको चिंता मत कीजिए, 14 वर्ष का दिन तक तो टाइम होता है लोग जन्म भर आपके लिए मैं जन्म भर जन्म भर मैं कर सकता हूँ बर्बाद। कई कई ने कहा बेटे देरी मत करो नहीं तो फिर वो
शुभ मुहूर्त निकल जाएगा,
शुभ मुहूर्त निकल जाएगा और फिर राज्याभिषेक नहीं हो पाएगा। फिर उन्होंने कहा ओ इसको क्या उन लोगों के लिए
मंत्र है
गदाए वस्त्र जटा जू बन के देख ले आओ बनाकर। तो वो तीन ले आई पात्रों में जटा जू और गिरवे कपड़े सन्यासी का भेद और राम से कहा जिसे तुम अपना ये राजकीय वस्त्र आराम में उतार दिया और तुम जू को लिख दिया। जब लक्ष्मण को देने लगे और लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण को देने लगे तो भक्ति सिंह का जैसे इसके लिए भी मांगा है मन यात्रा के लिए और साधु के लिए इसके लिए मांगा हरे शरीर जी क्यों नहीं चल जाती राक्षस उनकी पत्नी आ सके था। और जब सीता जी को तब राम ने इशारा किया लक्ष्मण जी ने ले ली वो भी पान करके तैयार। अब वो कहते हैं जैसे कि तुम भी ये ले लो इतने में पत्नी
अरुंधति
अरुंधति आई तो ये धिक्कार है तुमको बच्चा इसके लिए तुमने मांगा था ये तो अपने मन से जा रही है। महाराज ने कहा राजकीय सम्मान के साथ में ये जाएगी और इसके आभूषण और जो था कि सारा खजाना सारा कर्मचारी सब इसके साथ में जाएगा। अभी तो सब तक तुमने राज्य पर वो राज्य करेगा क्या मुझी है लेकिन बेटी मैं तुमको पहनने नहीं आता मैं तुमको पहना दू तो उन्होंने फिर उन्होंने बच्ची सी दोनों उसको निवारण किया और उसको लज्जा गाला डाली दी। इसके बाद में सीता जी ने रामचंद्र जी के आदेश से ग्रहण कर दिए और फिर उनका उन लोगों ने तबीयत बदल दिए साधु जैसा जैसा और सीता जी के अलंकार और इसके ऊपर में ही वो एक गेरुआ कपड़ा थोड़ा लगा बस। इसके बाद में सुमंत को आते हैं इनको रथ पर चढ़ा करके ले चलो और जा करके घुमा करके ले आ आराम करके रथ पर चढ़ करके और गए। इसके बाद चलते चलते और जो क्या किसी में क्या बोल रहे हैं
सिंगेपुर
में पहुंचे और वहां का राजा था
ऋषभ
राजा वो बड़ा सारी फलमान और ये था राम के प्रति समर्पित था कि महाराज दशरथ के पुत्र राजकुमार हैं उनको पता लगा वो तरह तरह को उपहार लेकर के रामचंद्र जी के चरणों में आया बोला कि हमारा परम सौभाग्य है आप हमारा ये राज्य स्वीकार कीजिए मिल गए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं ये बनी तो है अपन में हमारा राज्य है आप राज्य को स्वीकार आगे आपके राज्य पर मैं अभिषेक करता हूँ। राम ने कहा नहीं पिता का पालन करने के लिए प्रसाय है रात में वहीं पर है सारे जिसने अयोध्यापुर के लोग वृद्धाएं और वहां के जितने लोग थे वो सब वहां कर्म करेंगे सोने का रथ और उसके घोड़े का वहीं पर रात में विश्राम किए और राम एक वट वृक्ष के नीचे वो सिंके के उनके लिए बिछौना बनाया गया पांच राम भक्त के लिए वहाँ पर केवल चबूतरे पर पेड़ के नीचे तिनकों का ढेर लगा दिया गया और उसी पर लक्ष्मण जी ने अपनी
उत्तरीय बिछा दिया
बिछा दिया उसी पर सीता और राम ने विश्राम किया और लक्ष्मण जी रात भर जगे हुए सिंहासन में राम की रक्षा करते रहे और वो सिंहेश्वर का राजा वह राम की ये सब बातें लक्ष्मण जी से सुनता रहा और सुनकर के बड़ा अस्तित होता रहा रात भर बातें होती रही। ठीक आधी रात के समय में रामचंद्र जगे सीता जी को जगाया और जगा करके लक्ष्मण जी को भी जगाया और उसको बुलाया श्रृंगेरपुर के निषाद राज को और पूरा सब लोग सो रहे हैं उन्हें जोग माया से सुला दिया सो रहे तुरंत चलो यहाँ से और नदी को पार करके गंगा को और उस पार हमको नदी को पार करा देंगे निषाद राज केवट को बुला करके सबको छोड़ करके रात में घोड़े इत्यादि सबको रख दो और सुमंत्र जी को भी छोड़ दिया और छोड़ करके नदी के किनारे जब गए तो राज उसने केवट राज सिंहपुर के राजा ने एक केवट को बुलाया, निषाद राजा ने उसको बुलाया केवट को। ये दोनों अलग अलग व्यक्ति और कहा कि इनको राम को पासा रहना है। तो वो जो केवट था वो बड़ा चतुर था, सुना मैं नहीं पास करा था क्यों? अरे हमने सुना है एक पत्थर को इसके पैरों से छू दिया तो उसकी धूली लग गई तो बड़ी सुंदरी नारी बन गई। तो हमारी एक बीटी विवाह के योग्य है और ये यदि हमारी नौका भी यदि नारी बन गई तो ये दो बंदियों का विवाह हम कहाँ करेंगे और हमारा जीवन का निर्वाह कैसे होगा? इसलिए मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो हमको तो पाल जाना है, तो पाल जाना है तो पहले आपको मलमल करके आपका चरण खोलूंगा, पूरी तनिक न रहे और फिर मैं परीक्षा करके देख करके सब लौंगा में चरण रहते हैं। और रामचंद्र जी मुस्कुराने लगे कि क्या लक्ष्मण जी वो कटौती लाया और कटौती को क्या पहले कटौती होती है कि नहीं समझी है कि काट की तो कटौती है उनसे पानी रखा देखा कि कठौती यदि स्त्री नहीं बनी तो भाई नौका नहीं बन सकती। कला की चतुराई से उनके पैर मल मल करके धो करके और अपने बंध के सहित और उनको चढ़ाया नौका। नौका पर चढ़ करके राम चले, जब पार कर दिया उधर गुरु पार में गए तो रामचंद्र जी ने सीता की ओर में कुछ देखा गंभीर होकर।